अमन ने देखा था कि तपस्वी महाराज के साथ गांव के कुछ लोग भी थे, जिनमें कुछ बच्चे और औरतें शामिल थीं। तपस्वी महाराज एक आदमी से कह रहे थे, उस दुष्ट की काली नज़र अब मेरी बेटी पर पड़ चुकी है और जब तक वो उसे नहीं ले जाएगा तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे थे। तब वो आदमी बोला था, तपस्वी महाराज, उस दुष्ट के आदमी ने गांव भर में ऐलान करवाया है कि अगर कल तक राधा को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर देगा और गांव की जितनी भी औरतें हैं उन्हें बिना कपड़ों के आसपास के सभी गांव में नंगा घुमाएगा। ये सुनकर तारापरी के अंदर एक आग सी लग गई थी और वो राधा की हालत को समझने लगी थी। उसे परीलोक का वो राक्षस याद आने लगा था, जिसके कारण तारापरी को भी परीलोक को बचाने के लिए अपने जिस्म और रूह की कुर्बानी देनी पड़ी थी। तारापरी अब राधा में खुद को देखने लगी थी। तभी राधा बेदर्दी से अपनी आंखें मसलती हुई उठी और बोली थी, पिताजी आप मुझे जाने दें उस दुष्ट के पास। अगर मेरे जाने से पूरे गांव और यहां की औरतों की जान और इज्जत दोनों ही बचती है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हूं। राधा की बात सुनकर तपस्वी महाराज तड़प उठे थे और बोले थे, नहीं बेटी नहीं, मैं अपने जीते जी तुझे उस नर्क में नहीं झोंक सकता हूं। और राधा की माँ उसका हाथ पकड़कर रोने लगी थी, नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना, तू हमारी इकलौती बेटी है, तुझे हमने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। मेरी बच्ची तू ऐसा मत कहे, तू मत जा उस दुष्ट के पास, वो बहुत खतरनाक जानवर है, उसने न जाने कितने गांव की औरतों की जिंदगी तबाह कर दी है। उसके सैनिक हर रोज किसी न किसी गाँव की औरतों को पकड़कर उसके पास ले जाते हैं और जो औरत उस दुष्ट को पसंद आती है वो उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करता है। नहीं मेरी बच्ची नहीं, तू नहीं जाएगी वहाँ, मैं तुझे उस नर्क में नहीं जाने दूंगी। तभी उन्होंने देखा कि मोहन जोर जोर से सांस लेने लगा था। राधा उसकी हालत देखकर तड़प कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी थी, नहीं मोहन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी राधा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, आज ही तो हमारी शादी हुई है, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे और ये सब हो गया। ऐसा कहकर राधा रो पड़ी थी और तपस्वी महाराज फ्लैशबैक में खो गए थे। हुआ ये था कि मूर्ति बनाने के बाद गांव के बड़े स्थान पर शादी की पूरी तैयारी हो रही थी। राधा लाल घाघरा चोली में सजी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। राधा का खूबसूरत रूप लाल रंग में और ज्यादा निखरकर सामने आया था। मोहन ने जैसे ही राधा को देखा था वो अपने होश खो बैठा था और जल्दी ही राधा की माँ ने राधा को मोहन के करीब बिठा दिया था। मोहन ने राधा के पास में बैठते ही उसके साथ शरारत करनी शुरू कर दी थी। वो उसके कान में धीरे से बोला था, राधा आज के बाद हमें उस खंडर में सुहागरात नहीं मनानी पड़ेगी, अब हम अपने घर में अपने कक्ष में जब चाहें तब सुहागरात मना सकते हैं। राधा मोहन की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी और उसने ना आव देखा ना ताव, बहुत जोर से अमन की जांघ पर चिकोटी काटती थी जिससे मोहन की चीख निकल गई थी। तारापरी और अमन उन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुरा पड़े थे। तभी राधा की माँ उन दोनों के करीब बैठते हुए अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली थी, बस करो तुम दोनों, शादी होने वाली है, तुम दोनों की और तुम दोनों का बचपना अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तब तक तपस्वी महाराज भी वहां आ गए थे क्योंकि वे भी मोहन का चिल्लाना सुन चुके थे और आते ही उन्होंने राधा की माँ से कहा था, अरे भाग्यवान क्यों डांट रही हो बच्चों को, इस उम्र में बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे। ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई थी और वे सबके सब हंसने लगे थे। और अभी कुछ ही देर हुई थी कि सभी लोगों के बीच राजी खुशी राधा और मोहन की शादी पूरी हो गई थी। राधा मन और तन से तो कब की मोहन की हो चुकी थी, लेकिन अब सबके सामने हमेशा के लिए वे दोनों एक हो गए थे। अब उन्हें चोरी छिपे मिलने की कोई जरूरत नहीं थी, अब वे दोनों जब चाहें एक हो सकते थे। शादी के बाद जल्दी ही भोज का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और सभी हंसी खुशी खाना खाने लगे थे कि तभी एकाएक लगातार तीन आदमी खाना खाते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। तभी अचानक लोगों में भगदड़ सी मच गई थी। उन तीनों आदमियों की पीठ पर तीर के निशान थे। राजा के सैनिकों ने पूरे गाँव पर हमला कर दिया था और चारों ओर से राजा के आदमी तीर तलवार से वार करने लगे थे। इसी बीच वही मंत्री जिसका मोहन ने गला दबाया था वो बिल्कुल मोहन के पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसने मोहन को मौका दिए बगैर लगातार अपनी तलवार से एक के बाद एक उस पर 17 बार वार कर दिया था। अचानक हुए हमले से मोहन को संभलने का मौका ही नहीं मिला था और वो वहीं गिर गया था। उस मंत्री ने उस पर पीछे से वार किया था क्योंकि मोहन के बाजुओं की शक्ति का उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था। वो जानता था कि अगर वो मोहन से लड़ने के लिए सामने से गया तो फिर पक्का मोहन उसकी जान ले लेता, इसीलिए उसने मोहन पर पीछे से वार किया था। मोहन की ये हालत देखकर राधा अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई थी। राधा की ये हालत देखकर उस मंत्री ने कहा था, आप विक्रम सिंह की होने वाली धर्मपत्नी हैं और यूं किसी और मर्द के लिए आंसू बहाना शोभा नहीं देता। उस मंत्री की बातें सुनकर राधा का पूरा जिस्म गुस्से की वजह से कांपने लगा था और उसने उस मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली थी। जिस तलवार से उस मंत्री ने उसके पति मोहन पर वार किया था, उसी तलवार से राधा ने गुस्से में आकर उस मंत्री के जितने हो सकते थे उतने टुकड़े कर दिए थे। मंत्री की इतनी बुरी तरह से मौत होते देख उसके बाकी के साथी बेहद डर गए थे और वे वहां से भाग खड़े हुए थे। तब राधा के पिताजी ने राधा के हाथ से वो तलवार लेकर फेंक दी थी और वे राधा और मोहन को अपनी पत्नी और कुछ वफादार आदमियों सहित उस खंडर में जाकर छिप गए थे। तारा परी और अमन शादी के दिन ही मोहन की ऐसी हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। तपस्वी महाराज ने अपनी विद्या से कुछ धातु को लेकर आए और उसके द्वारा उन्होंने मोहन की दवा बनाना शुरू कर दिया था और राधा ने वो औषधि मोहन के पूरे जिस्म पर मल दी थी। लेकिन तभी तपस्वी महाराज का भरोसेमंद आदमी उस खंडर में आया था और उसने वहां आकर बताया था कि उस राजा ने अपने मंत्री के मरने के बाद इस पूरे गाँव को खत्म करने का फैसला कर लिया था और उसने साफ साफ कहा था, अगर इस गाँव को बचाना चाहते हो तो मुझे राधा चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ राधा चाहिए। ये सुनकर राधा का खून खौल उठा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो अकेली उस राजा और उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उस वक्त मोहन को ठीक करने के बारे में सोचने लगी थी। वो बस अब सबसे पहले यही चाहती थी कि उसका मोहन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही गांव के दूसरे आदमी ने आकर ये बताया कि राजा विक्रम खुद गांव में आया था और उसने राधा को ढूंढने के लिए गांव का एक एक घर खंगाल मारा था और जब राधा उसे नहीं मिली तब उसने ये धमकी दी थी कि अगर कल तक राधा को उसके सामने नहीं लाया गया तो वो इस गांव की एक एक औरत को पूरा नंगा आसपास के सभी गाँव में घुमाएगा। ये सुनकर राधा का दिमाग अब खराब हो चुका था, इसीलिए उसने तपस्वी महाराज से कहा था कि वो जाएगी उस दुष्ट राजा के पास, वो गांव के किसी भी औरत के साथ कोई अनहोनी नहीं होने देगी। ये सुनकर राधा के माता पिता दोनों तड़प उठे थे और साथ ही साथ मोहन भी बेहोशी की हालत में राधा की सारी बात सुन चुका था और वो जोर जोर से हिचकियां लेने लगा था।
राधा जल्दी से उसके पास गई थी और बोली थी, मोहन तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर तुम देखना हम दोनों मिलकर उस राजा को कितनी बेरहम मौत देंगे। मोहन राधा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा था और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलने लगा था, इस जन्म में हम अपना जीवन साथ नहीं जी सके तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम दोनों साथ रहेंगे, हम फिर मिलेंगे। और उसके बाद उसने राधा के करीब जाकर कहा था, एक बात हर जन्म में याद रखना, तुम राधा सिर्फ मोहन की हो। इतना कहते ही मोहन ने दम तोड़ दिया था और राधा बिना एक भी आंसू बहाए खाली खाली नज़रों से अपने सामने बेजान पड़े हुए अपने प्यार, अपने पति, अपने साथी को देख रही थी। तपस्वी महाराज अपनी बेटी के पास आए और बेचैन पड़े हुए मोहन के वजूद को देखकर उनका दिल भी रोने लगा था। और तभी तपस्वी जी एक पीले रंग का लोटा ले आए थे, वो एक काष्ठमंडल टाइप का कुछ था जो स्वर्ण से बना हुआ था। तपस्वी जी ने उस स्वर्ण काष्ठमंडल के द्वारा अपने हाथ में कुछ पानी लिया और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे थे और फिर एकाएक बोले थे, मैं तपस्वी महाराज अपनी जीवन भर की विद्या से राधा मोहन को ये वरदान देता हूँ कि वे दोनों अगला जन्म जरूर लेंगे और अगले जन्म में ये दोनों मिलकर उस दुष्ट पापी राजा का अंत करेंगे। इतना कहकर उन्होंने वो पानी राधा और मोहन की ओर फेंक दिया था। तभी राधा की माँ वहाँ आई थी और राधा से बोली थी, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू अगला जन्म जरूर लेगी और एक दिन जरूर लौट कर आएगी अपनी इस माँ के पास, और जब तक तू मोहन के साथ अगले जन्म में मेरे पास नहीं आओगी तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर राधा की माँ भी वहाँ से चली गई थी। और तब तपस्वी महाराज राधा से कहते हैं, इस गांव को बचाने के लिए तू अपनी कुर्बानी देने जा रही है मेरी बेटी, लेकिन याद रखना वो दुष्ट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम उसे अपनी पवित्रता कभी नष्ट नहीं करने दोगी। ये मेरा वरदान है तुझे मेरी बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए वो राक्षस कभी भी तेरी पवित्रता खत्म नहीं कर पाएगा, तू हमेशा कुंवारी रहेगी।